अध्यात्म अंतरंग का परिष्कार। परम पूज्य गुरुदेव के उद्बोधनों की यह विशेषता है कि वे भारतीय चिंतन के सर्वाधिक गुह्य विषयों का प्रतिपादन अत्यंत सहज एवं सारगर्भित भाषा में करते हैं। प्रस्तुत उद्बोधन में भी वे अध्यात्म का अर्थ कुछ इन्हीं शब्दों में समझाते दृष्टिगोचर होते हैं।
वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता ज्ञान की सर्वोच्च धारा है और उसका मूल उद्देश्य जीवात्मा के स्तर को ऊपर उठाना और उसकी भावना का विकास करना है।
पूजा कर्म करते समय पुष्प अर्पण, चंदन अर्पण, मिष्ठान अर्पण से लेकर दीपक के प्रज्वलन की वे एक सम्यक व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इन सबका मूल उद्देश्य मनुष्य के अंतरंग का परिष्कार करना है।
यदि मनुष्य का अंतरंग परिष्कृत हो जाता है तो उसे दैवीय शक्तियों का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होने लग जाता है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को।
ज्ञान की सर्वोच्च धारा आध्यात्मिकता। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। देवियो भाइयो,
जो लोग अपने कार्य पूरे करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए और दूसरी चीजों के लिए अपनी जिंदगी को तबाह करते रहते हैं, मित्रों,
मैं उनको समझदार कहूँ।
कैसे समझदार कहूँ, मैं तो उन्हें नासमझदार ही कहूँगा। आपकी दुनिया नासमझ है और आध्यात्मिकता का उद्देश्य आदमी की नासमझ को समझदारी में समन्वय करना है।
मेरे साथ यही हुआ।
45 वर्ष पूर्व मेरी नासमझी में समझदारी का समन्वय किया गया और मैं छोटा सा नासमझ मनुष्य और छोटा सा मगरमच्छ स्वार्थों का मारा, इच्छाओं का मारा, वासनाओं का मारा, एक गया गुजरा छोटा सा मनुष्य। मेरे पास ज्ञान की धारा की एक अमृत किरण आई तो मैं न जाने क्या से क्या हो गया। मेरे साथ मेरे गुरुदेव ने जो किया और मैं चाहता हूँ कि स्थिति को भुला करके मैं भी आपके साथ वही करूँ जो मेरे गुरुदेव ने मेरे साथ किया। मेरे गुरुदेव ने मेरा ज्ञान की धारा से परिचय कराया कि आध्यात्मिकता उस चीज का नाम है जो मनुष्य के जीवन में समाविष्ट हो जाती है और जीवन में जो ज्ञान उतारा जा सकता है उस चीज का नाम आध्यात्मिकता है।
मित्रों,
मुझे बहुत पहले यह मालूम था कि आध्यात्मिकता उस चीज का नाम है जो थोड़ी सी पूजा, थोड़े से टंटखंट जैसी चीजों में काम में लाई जाती है। मुझे आध्यात्मिकता का मतलब इतना मालूम था कि माला घुमाई जा सकती है, पूजा की जा सकती है, रामायण, गीता, भागवत पढ़ी जा सकती है, भगवान को चावल चढ़ाया जा सकता है, रोली चढ़ाई जा सकती है, आरती उतारी जा सकती है।
अंतरंग का परिष्कार है अध्यात्म। आध्यात्मिकता के बारे में पहले मेरा यही ख्याल था, फिर मेरा यह ख्याल बदल गया।
मेरी अकल और समझ को बदल दिया गया।
उसमें जमीन आसमान जैसा फर्क हो गया।
मुझे जब असलियत मालूम पड़ी तो मैंने कुछ और ही बात पाई।
असलियत जब मैंने देखी तो यह पाया कि जो भी कर्मकांड है, जो भी उपासना है, उसका ऊपर का मतलब और उनका उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य का अंतरंग का, उसकी जीवात्मा का स्तर ऊंचा उठाया जाए और मनुष्य की भावनाओं का विकास किया जाए। मित्रों, भावनाओं का घटियापन है तो आदमी घटिया ही बना रहेगा, श्रेष्ठ नहीं बन सकता।
अगर भावनाएं ऊंची हैं तो वह कभी भी ऊंचा बन सकता है।
ऊंचा व्यक्तित्व श्रेष्ठ व्यक्तित्व की निशानी है। ऊंचा व्यक्तित्व जहां कहीं भी होगा, ऊंचा व्यक्तित्व जहां कहीं भी निवास करता होगा, उसको लोकहित प्रधान और पालक माना जाएगा। और घटिया वाला व्यक्तित्व यदि मनुष्य का है तो दुनिया भर की असुविधाएं और कठिनाइयों पैदा हो रही होंगी।
आंतरिक जीवन का तो सवाल ही कहां पैदा होता है। इसलिए हमें कर्मकांडों का, पूजा उपासना का सारे रहस्य सिखाया गया है।
पुष्प अर्पण का अर्थ।
यह बात मेरी समझ में आ गई और मेरे रोम रोम में समा गई। मैंने यह पाया कि जो कुछ भी हमें पूजा पाठ के क्रिया कृत्य करने हैं, उनके माध्यम से हमको अपने व्यक्तित्व, अपनी विचारना, अपनी भावना और क्रिया पद्धति का परिष्कार करना चाहिए। यह तथ्य मुझे मालूम पड़ा।
पूजा का यह रहस्य मुझे मालूम पड़ा।
भगवान के चरणों पर क्यों गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है मेरी समझ में आ गया। खिलता हुआ गुलाब, हंसता हुआ गुलाब, मुस्कराता हुआ गुलाब, सुगंध से भरा हुआ गुलाब का फूल इस बात का अधिकारी है कि भगवान के चरणों में स्थान पाए और भगवान के गले में स्थान पाए।
मित्रों,
गुलाब केवल उस पौधे का नाम नहीं है जो वनस्पति के ढंग से पैदा होता है। भगवान उस आदमी का नाम नहीं है जो गंदगी में रहता है। और गुलाब का फूल अगर सूंघने को मिल जाए तो फूल कर कुप्पा हो जाता है। गुलाब के फूल से क्या लेना देना भगवान को।
सारी की सारी दुनिया में गुलाब ही तो खिले हुए हैं। बोलो, क्या करेगा वह तुम्हारा गुलाब लेकर के।
भगवान को गुलाब समर्पित करने का मतलब उसकी किसी जरूरत को पूरा करना नहीं है, बल्कि अपने मन के ऊपर एक छाप, एक संस्कार को डालना है कि मनुष्य का जीवन इस गुलाब के पुष्प की तरह से खिला हुआ होगा तो हम भगवान का प्यार और भगवान की समीपता पाने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम गुलाब के फूल के तरीके से खिलने की कोशिश करते हैं? क्या हमने अपने आप को गुलाब की तरह सुगंधित बनाया? क्या आपने आपको हंसता हुआ आदमी बनाया? क्या आपने आपको पुष्प बनाया?
क्या आपने आपको हंसता हंसाता खिलता खिलाता व्यक्ति बनाया? क्या अपनी खुशी को दूसरे आदमी को खुशी देने का अधिकार दिया?
अगर हमने ऐसा किया तो समझना चाहिए कि हमने फूल चढ़ाने की बात और फूल चढ़ाने का रहस्य जान लिया। अगर हमारी समझ में इतनी सी बात आ गई तो मैं समझता हूँ कि आपका फूल चढ़ाना सार्थक हो गया।
चंदन अर्पण का अर्थ। मित्रों,
इसी तरीके से हमने भगवान को चंदन चढ़ाया, कर्मकांड किया। सिंदूर चढ़ाने का मतलब यह नहीं कि भगवान गंदगी में रहता है और उसकी नाक में बदबू भरी रहती है।
उनको चंदन लगा देंगे तो उनका काम चल जाएगा,
इसका यह मतलब नहीं है। भगवान जहाँ रहता है वहाँ खुशबू की कोई कमी नहीं है,
वहाँ सुगंधित पदार्थ बहुत भरे रहते हैं,
वहाँ धूप बत्तियाँ बहुत चलती रहती हैं। अगर हम चंदन न चढ़ाएं तो भगवान जी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है।
सुगंधित पदार्थ चढ़ाने का मतलब यह है कि हमारा जीवन शांत और सुगंधित हो।
जहाँ कहीं भी चंदन लगाया जाए वहाँ शांति और सुगंध हो। जहाँ कहीं भी मस्तक पर लगाया जाए उसे शीतल कर दे। चंदन के सम्मुख जो भी पौधे उगे हुए हों वह उन उगे हुए पौधों में अपनी खुशबू उड़ेल दे। हम अपने पास अपने सम्मुख रहने वाले व्यक्तियों को भी वैसा ही बना दें जैसा कि चंदन अपने समीप के पौधों को सुगंधित बना देता है। चंदन के आसपास सांप बिच्छू के जहर का उस पर असर आया? नहीं आया। वह आदमी जो चंदन के तरीके से अपने जीवन को बना लेता है या बना सकता है उसी को यह हक है कि हमने चंदन चढ़ा करके चंदन चढ़ाने का मकसद और चंदन चढ़ाने का उद्देश्य पूरा कर लिया।
मिष्ठान देने का मर्म। मित्रों,
भगवान को हम शक्कर चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं।
शक्कर चढ़ाने का मकसद और मिठाई चढ़ाने का मतलब क्या है? मिठाई चढ़ाने का मतलब यह है कि भगवान को मीठा प्रिय है। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान को खटाई नापसंद है। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान जी मिर्च नापसंद करते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे जायके भगवान को पसंद नहीं है।
मिठाई चढ़ाने का मतलब सिर्फ एक है कि भगवान सबसे ज्यादा जिसे प्यार करते हैं, भगवान की सबसे प्रिय वस्तु जो हो सकती है वह मनुष्य की वाणी की मिठास, मनुष्य के व्यवहार की मिठास, मनुष्य की क्रिया की मिठास, मनुष्य की वृत्तियों की मिठास है।
अगर मिठास हमारे जीवन के हर क्रियाकलापों में घुल जाए तो हम इस बात के अधिकारी बन सकते हैं कि भगवान को हमारा जीवन और हमारी मनोभावना को मीठे की तरह समर्पित कर सकते हैं।
हमारा व्यवहार मिठास से युक्त हो। दीपक जलाने का अर्थ। मित्रों,
हम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का मतलब यह नहीं है कि भगवान की आंखों की रोशनी कम हो गई है। जब आदमी को कम दिखाई पड़ता है तो माइनस और प्लस के चश्मे लगाने पड़ते हैं। भगवान जी को मोतियाबिंद हो गया यह मतलब नहीं है। भगवान जी की आंखें सही हैं। भगवान जी के आंखों को धरती पर रखी किताब पढ़ने में और अखबार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। उनकी आंखें सही हैं। फिर दीपक जलाने से क्या मतलब है? हमको तो दीपक जलाने की जरूरत होती है क्योंकि दिन में जब अंधेरा हो जाता है और बादल छा जाते हैं और प्रकाश कम होता है तो बत्ती जलानी पड़ती है। ठीक है, आंखें कमजोर हैं इसलिए बत्ती जलानी पड़ती है, लेकिन भगवान जी की आंखें कमजोर नहीं हैं। भगवान जी की आंखों के आगे दीपक जलाएं या न जलाएं उन्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर दीपक जलाने की आवश्यकता क्या है? दीपक जलाने की जरूरत केवल यह है कि हम अपने जीवन में एक तरह की भावना का विकास करें कि भगवान को दीपक प्यारा है, भगवान दीपक को मोहब्बत करते हैं।
दीपक वह
जिसके मन में जलने की तमन्ना है, दीपक के पेट में प्यार भरा हुआ है। प्यार स्नेह सत्कार को कहते हैं और स्नेह का दूसरा अर्थ घी भी होता है, तेल भी होता है। जिसके पेट में स्नेह भरा हुआ पड़ा है वह है दीपक। और जिसने यह नीति अख्तियार कर ली है कि मैं दुनिया में उजाला फैलाऊंगा और अंधेरे में उजाला करूंगा, इसके लिए मैं जलने के लिए तैयार हूं। जो आदमी उजाला करने के लिए जलना मंजूर करता है वह आदमी उन सितारों के तरीके से है जो रात के समय जब चारों ओर अंधेरा छाया रहता है और उस अंधेरे से जो मुसाफिर रास्ता भूल सकते थे, भटक सकते थे, उनको अपनी छो समझदारी के द्वारा रास्ता दिखाता रहता है।
बच्चे गाते रहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मित्रों,
इस तरीके से छोटा वाला मनुष्य अपनी छोटी छोटी प्रवृत्तियों के कारण इस संसार में प्रकाश कैसे फैला सकता है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली जिंदगी कैसे जी सकता है? हम रास्ता दिखाने वाली जिंदगी जी सकते हैं। रास्ता दिखाने वाली जिंदगी गरीब आदमी भी जी सकते हैं और हजारों मनुष्यों को रास्ता दिखा सकते हैं।
काश हमने ऐसी जिंदगी जी हो। ऐसी जिंदगी को जीना भगवान की भक्ति का, दूसरे कर्मकांडों का, पूजा का उद्देश्य, भगवान का उद्देश्य पूरा कर सकता है।
हमारे मन में केवल कर्मकांड की क्रिया समझ में आए और उद्देश्य समझ में आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, यह कहना मुश्किल है।
भावनाओं का परिष्कार अध्यात्म। इसलिए मित्रों, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि आध्यात्मिकता के सहारे, पूजा के सहारे, गायत्री महामंत्र के सहारे हमें अपने आप का, अपनी जीवात्मा का विकास करना चाहिए और अपनी विचारणाओं, अपनी भावनाओं का परिष्कार करना चाहिए।
भावनाओं और विचारणाओं का परिष्कार जहां कहीं भी जिन व्यक्तियों ने शुरू किया,
छोटे से, नगण्य से, गरीब से मामूली आदमी महानतम व्यक्ति होते हुए चले गए,
भगवान का अनुग्रह, कृपा और वरदान प्राप्त करने के लिए उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ा। उन्होंने वह सब कुछ प्राप्त किया जिसकी मामूली आदमी ख्वाब में कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी चीजों का हकदार आप में से हर आदमी बन सकता है।
अगर आप लोगों को यह ख्याल आए कि आप लोगों को अपना मन, आपको अपनी नीयत, आपको अपना चाल चलन, आपको अपनी रीति नीति और आपको अपनी जिंदगी की गिरी हुई स्थिति को ठीक कर लेना चाहिए।
इतनी छो बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो मजा आ जाए।
आपको भगवान का प्यार और भगवान की कृपा मिलती हुई चली जाए। भगवान की निधि। मित्रों,
इसी तरीके से निधि भी है। निधि पाने के लिए भगवान की कृपा और भगवान की दया और भगवान की मोहब्बत सुरक्षित रखी हुई है। भगवान बहुत देर से इस इंतजार में बैठा हुआ है कि कोई तो आदमी हो जिसको कि मेरी मोहब्बत पाने का हक है।
कोई तो आदमी हो जिसको कि मैं अपना प्यार दूं। कोई तो आदमी हो जिसको कि मैं अपनी सहायता दूं।
भगवान ने यही भरोसा किया है और उन्होंने बहुत तरह की बहुतों को सहायता दी है।
अर्जुन को उन्होंने कहा, अर्जुन, दुनिया में बुराइयां बहुत फैली हैं।
बुराइयों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को जोखिम में डालना चाहिए और दुनिया में से बुराई को दूर करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, मुझे आप क्यों झगड़े में फंसाते हैं? इस काम को आप किसी और को सौंप दीजिए और मुझे तो आप पूजा करने की बात बता दीजिए, जो दुनिया में सबसे सुगम काम है। इससे सुगम काम कोई और नहीं है। यह सबसे सस्ता और सबसे सरल काम है। कारोबार चलाना हो तो आपको अकल की जरूरत है।
धागा टूटे नहीं और सूत खराब न हो जाए और कपड़ा खराब न हो जाए, बिक्री अच्छी हो तभी फायदा मिलेगा और माला घुमानी हो तो खटखट घुमाते रहिए। स्पीड का ध्यान रखना, माला घुमा दीजिए।
सबसे सस्ता और सबसे सरल और सबसे हल्का काम है भगवान का।
लेकिन मित्रों,
अर्जुन ने कहा, यह माला जैसा सस्ता काम दे दीजिए। हमको 56 लाख आदमी गंगा जी पर बैठे रहते हैं और सटक सटक माला घुमाते रहते हैं। बस यही काम मैं कर लूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा। आप झगड़े में मुझे मत फंसाए।
भगवान ने कहा, अर्जुन, तुझे झगड़े में फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी दुनिया में अवतार लेता हूँ तब मेरे अवतार लेने के दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है धर्म संस्थापनार्थाय और दूसरा है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश।
मैं कभी भी कहीं भी आऊंगा तो इन दो कामों के लिए ही स्वयं आऊंगा और कोई भी मेरा मकसद नहीं। अगर मैं मनुष्य के भीतर कभी आऊंगा तो इन्हीं दो कामों के लिए आऊंगा, तीसरा कोई मकसद नहीं है मेरे आने का।
जब मैं आऊंगा तो सभी को इस काम में लगाऊंगा। धर्म की स्थापना करने के लिए जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को भुला दे और अपनी सारी शक्ति को खर्च कर डाले, वह आदमी पाप, अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए अपनी शक्तियां खर्च कर डाले।
ऐसा तुम्हें भी करना चाहिए।
मित्रों, अर्जुन ने भगवान की बात को मंजूर कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपना गांडीव उठा और तीर चला।
बाकी सब काम मैं कर लूंगा।
अर्जुन ने कहा, मैं थक गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुझे थकने नहीं दूंगा।
मैं रास्ता भूल गया। तब उन्होंने कहा, मैं तेरे घोड़े चलाऊंगा।
भगवान आगे आगे रथ चलाते हुए चले गए और अर्जुन गांडीव से तीर चलाता रहा। गांडीव चलाने वाला अर्जुन, जो कि भगवान का काम करने को कटिबद्ध हुआ, भगवान की सहायता करने का अधिकारी हुआ। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश। यह तो पुराने जमाने की बात हुई।
भगवान की आज्ञानुसार गौतम बुद्ध पूजा पाठ करते हुए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आपका प्यार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने जीवन में क्या काम करना होगा।
उन्होंने कहा, एक धर्म की स्थापना और एक पाप का विनाश। इसलिए तुम धर्म की स्थापना करो। लोगों से कहा, बुद्धम शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। समाज में संघबद्ध रहो और विवेक बुद्धि की, अकल की सहायता से अज्ञान और अनाचार, अवसाद और छोटापन, परंपराओं और मान्यताओं, इनके पीछे भागने वाली दुनिया को रोको और कहो, बुद्धम शरण गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाऊंगा, विवेक की शरण में जाऊंगा, विवेक के अतिरिक्त अन्य सबको निस्तारित कर दूंगा। उन्होंने कहा, सब संघबद्ध हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। मित्रों, बुद्ध ने भगवान की आज्ञा मानी। बुद्धम शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि और संघ शरण गच्छामि, का संदेश लेकर भगवान बुद्ध चले गए और वैदिक हिंसा, तामसी और अंध परंपरा जो देश में फैली हुई थी, उसके लिए उन्होंने धर्मगत संघर्ष किया। उस जमाने का महान क्रांतिकारी बुद्ध अकेला था और जंगल में बैठा हुआ था।
भगवान से उसने कहा, आपने मुझे इतना बड़ा काम सौंपा, मैं किस तरीके से काम करूंगा? मेरे पास रुपया पैसा कहाँ है और मेरे पास साधन कहाँ है?
भगवान ने कहा, चल आगे आगे और मैं आया रुपया लेकर के और मित्रों। वे आए, सम्राट अशोक आए।
उन्होंने कहा, आप हैं जो भगवान का काम करने के लिए बैठे हैं?
उन्होंने कहा, हाँ, भगवान की आज्ञानुसार, भगवान की इच्छानुसार मैंने अपने जीवन को हथेली पर रखा और अपनी सारी की सारी बागडोर भगवान के सुपुर्द कर दी। सम्राट ने कहा, फिर आपको सामान साधनों की जरूरत होगी? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे पैसा चाहिए, साधन चाहिए।
अशोक ने कहा, भगवान का सारा साधन आपके चरणों पर स्थापित है, सारी की सारी चीजें, धन और दौलत उनके पास आ गई।
बुद्ध भगवान ने 2.5 लाख शिष्यों के माध्यम से समूचे एशिया और सारे विश्व में क्रांति की लहर फैलाई और भगवान स्वयं अशोक के रूप में उनकी सहायता कर रहे थे। भगवान का सहयोग। मित्रों,
एक बार देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे।
उनसे भगवान ने इच्छा और आज्ञा की कि पुरुषार्थ किया जाना चाहिए और इस विश्व वसुधा में जो अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, उनको निकाला जाना चाहिए।
देवताओं ने कहा, हम हार जाएंगे, और असुरों ने कहा, हम हार जाएंगे। भगवान ने कहा, मैं तो जिंदा हूँ, तुम्हें हारने नहीं दूंगा।
समुमंथन होने लगा। मंदराचल पर्वत समुद्र के नीचे तलहटी में चलने लगा। देवता चिल्लाए, महाराज,
जिस मंदराचल से हम मथानी का काम ले रहे हैं, वह तो अब डूबा और हमारा काम फेल हुआ।
कच्छप का रूप बना करके भगवान आए और मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। समुद्र मंथन होता रहा और समुद्र से रत्न निकाले जाते रहे। मित्रों, शंकराचार्य भगवान का कार्य करने के लिए रवाना हुए और उनकी दिग्विजय की यात्रा बाधित हो गई। वे बीमार हो गए। शंकराचार्य ने कहा, भगवान, मैं बीमार हूँ।
मैं 22 साल का छोकरा हूँ और देखिए मुझे भगंदर का फोड़ा है। मैं बहुत छोटा हूँ और बीमार हूँ, आपका काम कैसे करूँगा?
सम्राट माधाता उनके पास आए। उन्होंने कहा, शंकराचार्य,
आप शंकर दिग्विजय करने के लिए विश्व में जा रहे हैं?
उन्होंने कहा, हाँ,
जा रहा है।
तब राजा ने कहा, आप मेरी सेना ले जाइए और मेरे रथ और सैनिक ले जाइए।
आपसे शास्त्रार्थ में जो कोई मुकाबला करे, जो ज्ञान से आपका मुकाबला करे तो आप कीजिए, और जो बल से मुकाबला करे, ताकत से धमकाना चाहे तो मेरे सैनिक उसकी अकल ठिकाने लगा देंगे। राजा माधाता की करोड़ों की सेना और भरा खजाना आ गया शंकराचार्य की मदद के लिए।
मित्रों,
मैं गांधी जी की बात कहूंगा, जो अभी अभी की बात है, कैसे भगवान की सहायता मनुष्य के ऊपर बरसती हुई चली गई और चली जाती रहेगी।
जापान में एक छोटा सा छोकरा था।
उसके मन में आया कि कमाते खाते तो सभी हैं, धनवान सुखी रहने की तमन्ना तो सभी के जी में है, मुझे LDC UDC
बनने की अपेक्षा कुछ बेहतरीन काम करना चाहिए।
मनुष्य का जीवन कुछ बेहतरीन कामों के लिए मिला है, इसलिए मुझे उन्हीं कामों में अपनी जिंदगी को लगा देना चाहिए। जापान के गांधी कागावा केजी में यह बात आई। जिस तरह से महात्मा गांधी की तस्वीरें अपने यहाँ हर जगह रहती हैं,
सभी महात्मा गांधी की जय बोलते हैं, सारा का जापान भी एक ही आदमी की जय बोलता है और उस आदमी का नाम है कागावा। एक छोटा सा विद्यार्थी जिसके माँ बाप मर चुके थे,
अकेला बच्चा रह गया था। क्या करना चाहिए?
हमारे आपके जैसा आदमी होता तो यह ख्याल करता, यह ख्वाब देखता कि ब्याह कर लेना चाहिए,
बच्चे पैदा करना चाहिए और नौकरी करनी चाहिए,
अच्छा घर लेना चाहिए और सिनेमा देखना चाहिए, बीबी के लिए जेवर बनाने चाहिए।
इन्हीं ख्वाहिशों में सारी की सारी जिंदगी खत्म हो जाती।
मित्रों, अगर हमारे आपके जैसा घटिया आदमी जापान का गांधी कागावा होता तो, पर कागावा की तमन्नाएं वो थी जो आध्यात्मिक मनुष्यों की होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, मुझे जापान की सेवा करने के लिए भगवान ने भेजा है, मैं सेवा करूंगा।
वह गांव गांव गया, मोहल्ले मोहल्ले गया,
जहां कहीं भी गंदगी देखी, जहां कहीं भी कोढ़ी और गंदे लोग देखे, जहां कहीं शराबी गरीब गंदे लोग रहते थे, रोज खून खच्चर होते थे,
गाली गलौज होते थे,
जहां सारे के सारे लोग नरक में डूबे पड़े थे,
जापान के गांधी कागावा वहां गए और उस मोहल्ले में अपनी झोपड़ी बना ली। उन्हीं दरिद्र लोगों के बीच रहने लगे। क्रमशः
गतांक से आगे विगत अंक में आपने पढ़ा कि परम पूज्य गुरुदेव अपने इस महत्वपूर्ण उद्बोधन में सभी साधकों को संबोधित करते हुए उन्हें यह बताते हैं कि अध्यात्म का सही अर्थ अपनी भावनाओं, चिंतन, दृष्टिकोण एवं अंतरंग का परिष्कार करना है। वे कहते हैं कि पूजा अर्चना के क्रम में हम जिन क्रियाकलापों को करते हैं, वे क्रियाकलाप भी वस्तुस्थिति में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक परिवर्धन की ओर इशारा करते हैं।
पुष्प अर्पण, चंदन अर्पण, दीप प्रज्वलन, मिष्टान अर्पण जैसे अनेक कर्मकांडों का उदाहरण देते हुए परम पूज्य गुरुदेव उनकी लौकिक गतिविधियों के पीछे सन्निहित मर्म से श्रोताओं को अवगत कराते हैं।
इसके साथ ही वे बताते हैं कि जब हम अध्यात्म के पथ का सही अर्थों में अनुपालन करते हैं तो भगवान की निधि और भगवान का सहयोग हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। संत और ऋषि का स्तर।
मित्रों,
जीवात्मा और परमात्मा के एक में शामिल होने के लिए हमको गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा और भावना की भूमिका में प्रवेश करना पड़ेगा, चेतना की भूमिका में प्रवेश करना पड़ेगा। भावना की भूमिका में प्रवेश करने की आप में हिम्मत नहीं थी। आपने अपने बहिरंग क्रियाकलापों को अपने जीवन के लिए काफी मान लिया और आपने यह बात जान ली कि हमने जो कुछ भी शरीर से कर लिया वह काफी हो गया, जबान की नोक से जो जप कर लिया वह काफी हो गया,
पुस्तक को हमने पढ़ लिया वह काफी हो गया,
नाक से पानी पी लिया, कान से घंटी बजने की आवाज को सुन लिया वह काफी हो गया।
तो मित्रों, मैं आपको बालक कहूंगा, बच्चा कहूंगा और गैर जानकार नासमझ कहूंगा। क्या आप इन सारे के सारे क्रियाकलापों को यह मानते हैं कि हमारी जीवात्मा का स्तर ऊंचा हो गया और लक्ष्य पूरा हो गया?
वह सब हो गया जो संत का होना चाहिए था,
एक ऋषि का होना चाहिए था। मित्रों,
संत और ऋषि का स्तर बढ़ाने के लिए आपको अपने अह को ठीक करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। अगर आपका अह काबू में नहीं आया तो आपके सारे के सारे कार्य, जैसे एक टांग पर खड़े रहना, पानी में बैठे रहना, धुनी तापते रहना, एकादशी का उपवास करने का मतलब कुछ है ही नहीं, आप सही मान लीजिए, फिर और कोई मतलब नहीं है। अगर आपने दूसरी वाली मंजिल पूरी न की, साधन काम के लिए किए जाते हैं, साध्य अलग होता है, साधना का महत्व अपने आप में होगा। मैं यह कैसे कहूं कि साधना का महत्व नहीं है, लेकिन साध्य अलग चीज है। साध्य वह है जो हमारी जीवात्मा के स्तर को सही करता है, ठीक बनाता है और हमारी अहंता का निराकरण करता है। हमारी अहंता का जब निराकरण हो जाता है तब हम योगी हो जाते हैं। हमने अपने आप को भगवान से जोड़ लिया, जोड़ने के लिए पूजा पाठ स्तोत्र की विधियां अपने आप में उपयोगी होंगी। कैसे उपयोगी नहीं होंगी, मैं तो सिखाता रहता हूँ कि ये उपयोगी हैं, पर पूर्ण नहीं है, समग्र नहीं है।
मित्रों,
निवेदन में यह कर रहा था कि हमको मूलतः चेतना स्तर तक प्रवेश करना पड़ेगा। अगर चेतना के स्तर तक हमारा प्रवेश न हो सका तो बात कुछ बनने वाली नहीं है।
हमारी अहंता को हल्का पढ़ना चाहिए और ढीला पढ़ना चाहिए।
हमारी अहंता कम होनी चाहिए और मैं का भाव हट करके हम में प्रवेश होना चाहिए।
गायत्री मंत्र का न्यूक्लियस।
गायत्री मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे मालूम पड़ी, सारे का सारे जादू जो उसका मालूम पड़ा, उसकी सारी की सारी दिशाएं मालूम पड़ी, प्रेरणाएं मालूम पड़ी।
जो प्रकाश मुझे गायत्री के अंदर मालूम पड़ा उससे मैं धन्य हो गया।
मुझे यह मालूम पड़ा कि इसका प्राण कहाँ है,
इसका न्यूक्लियस कहाँ है,
गायत्री का केंद्र कहाँ है। केंद्र को मैंने सारे में तलाश किया। जो जर्रा होता है, एटम होता है, हमारे जीवाणु होते हैं।
हमारे जीवाणु का एक बीच वाला भाग होता है जिसको हम ध्रुव केंद्र कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। गायत्री का नाभिक कहाँ है? नाभिक को, न्यूक्लियस को तलाश किया तो मुझे यह मालूम हुआ कि धियो यो नः जो शब्द है इसका न्यूक्लियस ही है।
मैं नहीं, हम हमारा मैं जितना ढीला होता चला जाता है, जितना हल्का होता हुआ चला जाता है, हमारी अहंता जितनी कम होती चली जाती है और हमारी व्यापकता जितनी विस्तृत होती चली जाती है, हमारा दायरा बढ़ता हुआ चला जाता है।
मित्रों,
हम छोटे से दायरे के लिए नहीं हैं, थोड़े से लोगों के लिए नहीं हैं, हम शरीर तक सीमित नहीं हैं,
हमारे कुटुंब के लोगों तक, उनकी खुशहाली तक हमारे स्वार्थ सीमित नहीं हैं। हमारे स्वार्थ सारे विश्व तक व्यापक हो गए हैं, प्रत्येक मानव तक व्यापक हो गए हैं। हमारे स्वार्थ धर्म तक व्यापक हो गए हैं, संस्कृति तक व्यापक हो गए हैं, अध्यात्म तक व्यापक हो गए हैं, आस्तिकवाद तक व्यापक हो गए हैं।
मानवीय पीड़ा हमारी पीड़ा है, मानवीय सुख और शांति हमारी सुख और शांति है। इसलिए हमारे स्वार्थ स्वयं के लिए हैं और हमें अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए, कपड़ा पहनना चाहिए।
यही दर्द, यही इच्छा जब विस्तृत और व्यापक होकर के इतनी असीम हो जाती है कि जो खुराक हमको जरूरी है वह सबको मिलनी चाहिए, पैसे की जो जरूरत हमको है वह सबको मिलनी चाहिए, और यही विद्या जो हमको जरूरी है सबको मिलनी चाहिए, यही सुख जो हमको जरूरी है सबको मिलना चाहिए। प्रतिध्वनि है भगवान। मित्रों,
जब ये भावनाएं हमारे भीतर आ जाती हैं तो हम योगी हो जाते हैं और भगवान से जुड़ जाते हैं। भावनाओं की यही प्रतिक्रिया लौट करके हमारे पास आ जाती है और हम भगवान हो जाते हैं। भगवान क्या है?
भगवान मित्रों
प्रतिध्वनि है और प्रतिच्छाया है। भगवान और कुछ नहीं है, वह प्रतिध्वनि और प्रतिच्छाया है। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी भावना होती है, उसी की प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि गूंज करके हमारे पास आ जाती है। भगवान के जवाब ठीक वही होते हैं जो हमारे जवाब होते हैं। भगवान से जब हम यह कहते हैं कि अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए,
निकालिए हमें बेटा दीजिए, लाए हमको पैसा दीजिए, लाए हमको ये दीजिए, लाए हमको वो दीजिए, लाए हमारी नौकरी में तरक्की कराए, लाए हमारी बीमारी अच्छी कीजिए,
ये सारी की सारी बातें जो हम कहते हैं, ठीक उसी की प्रतिध्वनि इस अंतरिक्ष में से होकर के हमारे पास चली आती है और हमसे यह पूछती है कि लाए आपके पास पैसा कहाँ है, हमको दीजिए, आपके पास शरीर श्रम कहाँ है, हमको दीजिए, आपके पास नौकरी में तरक्की कहाँ है। नहीं साहब,
हमारी नौकरी में तरक्की कराए,
हमको संतान की जरूरत है और वह भगवान की संतान जैसी होनी चाहिए,
लाए हमको संतान दीजिए। मित्रों
यह कौन कहता है? भगवान कहता है। किससे कहता है? उस मांगने वाले से कहता है। मांगने वाले में जद्दोजहद बराबर बनी रहती है और ऐसी बनी रहती है जैसी कि दाराशिकोह और उसके भाई में बनी रहती थी।
दारा और उसका भाई दोनों ही यही कहते थे कि हमको उम्र चाहिए और राज्य चाहिए।
दोनों भाइयों में जद्दोजहद होने लगी और लड़ाई होने लगी। दोनों की लड़ाई में बड़े भाई ने छोटे भाई का सिर कटवा दिया और सिर कटवा करके थाली में रखकर मंगवा लिया। हम और हमारा भगवान दाराशिकोह और औरंगजेब हैं और दोनों बैठे हैं कि राज्य हमको चाहिए और दौलत हमको चाहिए।
हम कहते हैं कि दौलत हमको चाहिए और भगवान कहता है कि तेरी दौलत हमको चाहिए।
तेरे पास क्या है, निकाल। और हम कहते हैं कि तेरी दौलत कहाँ है, निकाल दे हमको। भगवान कहता है कि निकाल, तेरे पास कहाँ है। हम दोनों अपने अपने चाकू लिए हुए हैं, तलवार लिए हुए हैं,
छुरे लिए हुए बैठे हैं। कब किसका सिर काट डालें और कब किसका खात्मा कर डालें? प्रतिध्वनि बदले तो प्रतिक्रिया बदले। लेकिन मित्रों
जब यह प्रतिध्वनि यह प्रतिक्रिया बदल जाती है, उस क्षण जब हम भगवान से यह कहते हैं कि हमारी सारी चीजें तुम्हारी हैं, हमारा शरीर तुम्हारा है, हमारी अकल तुम्हारी है, हमारी भावना तुम्हारी है और हमारा धन तुम्हारा है, हमारा सब कुछ तुम्हारा है, हमारे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा है और तुम्हारे लिए है, यह विचार जिस क्षण हमारे मन में आ जाता है तो हमारी लड़ाई का मोर्चा बदल जाता है और हमारी लड़ाई के लड़ने वाले शूरवीरों की शिकलें बदल जाती हैं। हमारी लड़ाई के लड़ने वाले शूरवीर राम और भरत जैसे हो जाते हैं। रामचंद्र जी कहते थे कि भरत गद्दी तेरे लिए है,
तुझे लेनी चाहिए, गद्दी पर तुझे बैठना चाहिए।
मैं बड़ा हूँ, मैं तो जंगल में अभी रहूंगा।
तू छोटा बच्चा, छोटा भाई है और तुझे ही गद्दी पर बैठना चाहिए। तू गद्दी पर बैठ।
भरत कहते थे कि आप बड़े भाई और आप पिता के तुल्य हैं, आपको ही गद्दी पर बैठना चाहिए। मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं क्यों बैठूंगा। दोनों में खूब बहस हुई।
फिर जीता कौन?
धर्म जीता और योग जीता और हारा कौन? मैं हार गया, अह हार गया। रामचंद्र जी वनवास को चले गए और भरत जी नंदीग्राम में जा करके उसी तरह साधुओं जैसा लिबास पहनकर जमीन पर सोने लगे और राम की तरह वनवासी जीवन जीने लगे। अयोध्या के सिंहासन पर राम जी के खड़ाऊं रख करके राजपाट चलाने लगे।
मित्रों
यह क्या हो गया? राम और भरत की कथा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। राम और भरत का चित्रकूट में मिलन हम पढ़ते हैं। छाती से मिलाकर जब हम मिलते हैं तो कितना आनंद आता है।
सारी रामायण एक ओर और राम भरत का मिलन एक ओर।
जब गहराई से इसको पढ़ते हैं तो हमको ऐसा आनंद आता है और मालूम पड़ता है कि आध्यात्मिकता का सार, रामायण का सारा सार उसी में रखा है।
यह रामायण का न्यूक्लियस वहाँ है, केंद्र वहाँ है, नाभिक वहाँ है जहाँ राम और भरत छाती से मिलाकर मिलते हैं।
ऐसा आनंद और कहीं नहीं आता।
योग की सच्ची व्याख्या। बार बार मन करता है कि रामायण के प्रसंगों को पढ़ना चाहिए।
यह क्या हो रहा है?
यह मैं योग की व्याख्या कर रहा हूँ। आप जिस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं, उस उद्देश्य का नाम है योग।
हमने आपको योग सिखाने के लिए बुलाया है। आपने तो समाज की सेवा करना बता दिया और यज्ञ करना बता दिया। आपने योग करना कहाँ बताया? आप यकीन रखना, मैंने सचमुच योग बताया है। झूठ वाले योग बताने वालों में से मैं नहीं हूँ, ताकि मैं आपको तरह तरह के खेल खिलौने हथेली पर दे करके यह कहूँ कि देख बेटा, चंद्रमा मंगा दिया।
मुझे लक्ष्मी जी मंगवा दीजिए। अच्छा बेटा, मैं तुझे लक्ष्मी जी दूंगा। तो गुरुजी
कब देंगे?
कल सवेरे दे दूंगा। आज शाम को लक्ष्मी जी को मंगा लूंगा और वह सवेरे ही आ गया, लाए लक्ष्मी जी दे दीजिए। हाँ बेटे, ले लक्ष्मी जी।
लक्ष्मी जी किसकी बनी है? दोनों तरफ हाथी बैठे हैं और बीच में लक्ष्मी जी बैठी हैं। दोनों हाथी लक्ष्मी जी के ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं। लक्ष्मी जी कमल के फूल के ऊपर बैठी हैं।
ले बेटा, ले जा लक्ष्मी जी को।
दो आने की खरीद करके लाए हैं, ले जा।
गुरु जी,
ये कैसी लक्ष्मी जी हैं? ये तो बिरला के बराबर भी धनवान नहीं बना सकी और टाटा के बराबर भी नहीं और मफतलाल के बराबर भी नहीं बना सकी। ये कैसी लक्ष्मी जी हैं?
बेटे, जैसी तैने मांगी थी वैसी लक्ष्मी जी मैंने दे दी।
नहीं साहब,
हमको असली लक्ष्मी दीजिए और हमको बिरला टाटा तो बना ही दीजिए।
आपने यह क्या दे दिया?
बेटे,
यह बच्चों का खिलौना है।
तू भी तो खिलौना ही मांग रहा था, सो मैंने तेरे हाथ में खिलौना थमा दिया। नहीं गुरुजी, हमको तो योग बता दीजिए।
देख बेटा, अभी बताते हैं।
नाक बंद कर, खोल, लंबा लंबा श्वास ले, निकाल, बस योग आ गया।
नहीं बेटे, यह तो योग नहीं हुआ।
मित्रों,
योग ऐसे नहीं बनता है। नाक में कहीं योग रखा है।
नहीं साहब, हवा खींचूंगा और निकालूंगा, बिल्कुल पागल आदमी है।
नाक की हवा में कहाँ है योग? नाक में तो कफ भरा पड़ा है। नहीं साहब,
मैं तो नाक से योग करूंगा। बेटे,
नाक में योग नहीं है तो फिर कहाँ है
योग? मित्रों,
भावनाओं में है, विचारणाओं में है। भावनाओं का और विचारणाओं का परिष्कार करना वास्तव में, असल में यही योग है। आपको जब कभी भी यह बात समझ में आ जाए, चाहे आ जाए, चाहे हजारों वर्ष बाद आए।
मनुष्य और भगवान का मिलन है योग।
योग का मतलब कभी भी आपको जानना पड़े, समझना पड़े तो एक ही दिशा आपको मालूम पड़ेगी और एक ही बात आपको मालूम पड़ेगी कि योग का अर्थ दो तत्वों का जुड़ना है,
अर्थात चेतन तत्वों का जुड़ना, एकाकार होना।
जड़ चीजों की तो मैं नहीं कहता, जड़ चीजों की तो एक की भी अलग हस्ती बनी रहती है, पर चेतन जब कभी भी मिलेगा तो वे दोनों एक हो जाएंगे, एक दूसरे में विलय हो जाएंगे। फिर दोनों की हस्ती कभी अलग रह ही नहीं सकती। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कभी भी आपस में मिलेंगी तो पानी बन जाएंगी और दोनों की शक्ल बदल जाएगी,
कुछ और ही बन जाएगी। मित्रों, मनुष्य और भगवान जब कभी भी मिलेगा तो मनुष्य मनुष्य रह ही नहीं सकता। फिर मनुष्य और भगवान दोनों जब मिल जाएंगे तो हम पानी बन जाएंगे,
देवता बन जाएंगे और हम संत बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे। इससे कम में हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता, इससे कम हमारी हस्ती रह ही नहीं सकती। भक्त और भगवान दो अलग रह ही नहीं सकते।
मित्रों,
मैं योग की बात कह रहा है। चेतन चीजों को जब आप मिला देंगे तो वे फिर किस तरीके से अलग रह जाएंगी? गंगाजल और यमुनाजल मिला दीजिए, दोनों एक ही हैसियत के हो गए।
क्यों?
क्योंकि आपने दोनों को मिला दिया। अब आप अलग कर दीजिए ना गंगाजल और यमुना जल को, कहाँ अलग हो सकते हैं? आपने उन्हें मिला जो दिया, अब वे अलग नहीं हो सकते,
दोनों एक हो गए। भगवान के साथ जब जीवात्मा मिल जाएगी तो फिर दोनों एक हो जाएंगे,
दो अलग रह ही नहीं सकते। योग करने की शिक्षा इसीलिए मैं आपको दे रहा था।
मनोवृत्ति से तय होते हैं योगी या भोगी। मित्रों,
आपको न केवल भावनाओं की दृष्टि से बल्कि क्रियाओं की दृष्टि से भी असल में योगी होना चाहिए,
इसीलिए मैं आपको योगी बनाना चाह रहा हूँ। मेरा असली लक्ष्य आपको योगी बनाना है।
योगी बनने के लिए आपको अपनी भूमिका भोगी से हटा देनी पड़ेगी, क्योंकि योगी और भोगी दोनों एक दूसरे की भिन्न दशाएं हैं। भोगी वह है जो मांगता रहता है और चाहता रहता है, जरूरतमंद बनना चाहता है, मालदार बनना चाहता है और संपन्न बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। उस आदमी का नाम क्या है? भोगी है। भोगी से भिन्न प्रकार का स्तर जो है वह क्या है? उसका नाम योगी है। योगी भगवान के लिए समर्पित होता है और भोगी भगवान को अपने लिए समर्पित कराना चाहता है। वह भगवान से तरह तरह की ख्वाहिशें और तरह तरह की फरमाइशें पेश करता रहता है। भगवान के पास कोई बल है, शक्ति है और ताकत है, सो अपने लिए मांगता रहता है,
उसका नाम भोगी है।
योगी उस आदमी का नाम है जो मांगता नहीं है बल्कि भगवान से यह कहता है कि हमारे पास जो चीजें हैं सो हम आपको सब देंगे, यह चीजें आपकी हैं। बस मूलतः मनोवृत्ति में इतना फर्क है।
मित्रों,
वास्तव में एक मनोवृत्ति का नाम योग है और दूसरी मनोवृत्ति का नाम ही भोग है, अन्यथा जिंदा तो आपको भी रहना पड़ता है और हमको भी रहना पड़ता है, योगी को भी रहना है और संत को भी रहना पड़ता है। अनाज तो आप भी खाते हैं, अनाज तो संत भी खाते हैं, कपड़ा आप भी पहनते हैं, संत शाल पहनता है, कंबल पहनता है और मृगछाला पहनता है, शरीर को वह भी ढकता है,
शरीर को ढके बिना किसका काम चला है?
किसी का भी नहीं चला है। खाए बिना न आपका काम चलता है और न उनका काम चला है।
शरीर निर्वाह की क्रियाएं तो मित्रों
एक सी ही होती हैं।
क्या योगी की, क्या भोगी की,
सबको अपना पेट भरना पड़ता है। ठीक है, आपने गेहूं से भर लिया, योगी ने मक्का से भर लिया, पर अन्न तो उसको भी लेना पड़ा ना। शरीर का निर्वाह करने के लिए सोना आपको पड़ता है और संत को भी सोना पड़ता है। आप पलंग पर सो जाते हैं और वह जमीन पर पत्ते घास बिछाकर सो जाता है।
बात तो एक ही हो गई ना।
उनमें और आप में फर्क कहाँ रहा? जीवन निर्वाह करने की क्रिया और जीवन यापन करने में योगी और भोगी में कुछ खास फर्क नहीं होता। विचार करने की शैली में फर्क होता है, सोचने के तरीके में फर्क होता है। आदमी सोचता है कि भगवान का नाम ले करके, पूजा करके वह हमारे वश में आ जाएगा, हमारे काबू में आ जाएगा, बेटे। यह उसका अज्ञान है।
मित्रों,
मैं आपसे यह कह रहा था, मैं आपको योगी बना रहा था और यह कह रहा था कि आप अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को कम कर दीजिए और यह करना शुरू कर दीजिए कि हमको हमारा शरीर मिला है तो शरीर का निर्वाह करने के लिए हम परिश्रम करेंगे। अपनी कमाई से ही हम अपना पेट भरेंगे।
यह हमारा ऑटोमेटिक शरीर है।
हमको किसी से मांगने की, किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत क्या है? हमको भगवान ने हाथ दिए हैं, कलाइयां दी हैं। हम जमीन में लात मारेंगे और पानी निकाल लेंगे। अपनी कलाइयों से मेहनत करेंगे और रोटी खा लेंगे। शरीर निर्वाह के लिए आपके ऊपर यह एक छोटे से बगीचे की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए आपको अपने फर्जों को पूरा करना चाहिए। कुटुंब, परिवार जो भी है, उसको शिक्षित बनाना आपका काम है।
उसको संस्कारवान बनाना, स्वावलंबी बनाना आपका काम है, बस उससे आगे नहीं। उससे आगे जो भी कदम आप उठाएंगे, तो परिवार के साथ अत्याचार कर रहे होंगे।
इन लोगों को खुश करने के लिए, उनकी इच्छानुसार चलने के लिए अगर आपने कदम बढ़ाए, तो मित्रों,
आपकी दुर्गति होना सुनिश्चित है। मित्रों,
आप सबको खुश नहीं रख सकते, तो फिर किसे खुश करना चाहिए?
एक भगवान को खुश करना चाहिए और एक अपनी अंतरात्मा को खुश करना चाहिए।
इन दो के अलावा किसी तीसरे को खुश करने की जरूरत नहीं है। आप इन दो को खुश कीजिए, क्योंकि आगे जो आपको राह पार करनी है वह अपनी जीवात्मा के सहारे पार करनी है। मिलाना तो इन दोनों को ही है, ना दुनिया वालों को नहीं मिलाना है।
मित्रों,
इसीलिए मैंने आपको योगी बनाने के लिए बुलाया है, ताकि अपने आप को आप भगवान में समर्पित कर दें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही जो मैंने आपसे पहले कहा और फिर कहता हुआ चला जाऊंगा कि आप अपने आप की सफाई कीजिए, अपने मन की मलिनताओं की सफाई कीजिए। मन की मलिनताओं की सफाई का मतलब साबुन से साफ करना नहीं है, नेति, धोती और गंगा जी में नहाना नहीं है, वरन वे कषाय कलमश जो आपके ऊपर लोभ के रूप में, मोह के रूप में, वासना तृष्णाओं के रूप में हावी हो गए हैं, सवार हो गए हैं, आपको उन्हीं की सफाई करनी है और किसी की सफाई नहीं करनी है।
मित्रों,
शरीर के धोने न धोने से भगवान नाराज नहीं हो सकते। भगवान जी जब कभी भी आपसे नाराज होंगे और जब कभी भी नाखुश होंगे, जब आपके मन के ऊपर मलिनताएं छाई रहेंगी।
योग इसी आत्मशोधन का, आत्मपरिष्कार का नाम है। मैंने आपको यही सिखाया कि आपको योगी बनना चाहिए और वह योगाभ्यास करना चाहिए जिसमें कि आपकी अहंता, जिसमें आपकी स्वार्थपरता, जिसमें आपके लोभ का निराकरण होता हो, समाधान होता हो। इसके लिए जो कर्मकांड बताए, आत्मशोधन की प्रक्रियाएं बताई, आत्मविस्तार की प्रक्रियाएं बताई, वो सारा का सारा योगाभ्यास ही है और यह भावनात्मक योग है।
आपको इसी को सीखना और जीवन में धारण करना है। आज की बात समाप्त।
ओम शांति।